हरे कृष्ण। जस्या जिसका स्वरूपम स्वरूप कवयः महान संत कवि विपश्चितः परम सत्य को सुनिश्चित करने में पटु गुणेषु तीन गुणे से युक्त इस भौतिक जगत में दारुषु काष्ठ में एवा सदृश जात प्रकट वेदसम अग्नि मथनन्ति मथते हैं मथना अरणी या मथानी से मनसा मन के द्वारा दिदृक्षवः उत्सुक जन गूढ़ क्षिपे क्रियार्थे कर्म तथा उनके फलों के द्वारा नमः नमस्कार है ईरिता आत्मने प्रकट होने वाले प्रभु को भगवान को अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऋषि तथा मुनि काष्ठ में छिपी अग्नि को अरणि के द्वारा उत्पन्न कर सकने में समर्थ हैं। हे प्रभु, ऐसे व्यक्ति आपको प्रत्येक वस्तु में यहाँ तक कि अपने शरीर में भी देखने का प्रयास करते हैं। मानसिक या भौतिक क्रियाओं जैसी अप्रत्यक्ष विधियों से आपको नहीं समझा जा सकता। आप स्वतः प्रकट होने वाले हैं, अतः जब आप देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति सर्वत्र भावे न आपकी खोज में संलग्न है, तभी आप अपने को प्रकट करते हैं। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्रियार्थ शब्द का अर्थ है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठानों द्वारा। विपश्चित शब्द की व्याख्या तैतरीय उपनिषद में इस प्रकार से दी गई है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोनुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु जन्मांतरों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझे सब प्रकार सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि भगवान सबके हृदय में विद्यमान है और जो भगवान को कणकण में उपस्थिति अग्नि की काष्ठ के रगड़ने से उत्पन्न होती है, वैदिक युग में ऋषियों द्वारा काष्ठ में अग्नि उत्पन्न की जाती थी। जात वेद का अर्थ जठराग्नि भी होता है, जो भोजन को पचाने वाले और भूख उत्पन्न करने वाली है। गुढ़ शब्द मंत्रों के जाप से ही श्री भगवान को जाना जा सकता है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा वह सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। साक्षी कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास वह जीवात्मा के सभी व्यापारों का साक्षी है। साक्षी चेतना केवलो निर्गुणस्य। श्री भगवान साक्षी होने के साथ साथ जीवित शक्ति हैं, तो भी वह समस्त भौतिक गुणों इतने दिव्य हैं। पंचम स्कंद में जम्बूद्वीप का वर्णन चल रहा है, तो जम्बूद्वीप में रहने वाले जो वहाँ के निवासी हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप लोग पीछे सुने होंगे और द्वीपों का वर्णन हुआ है जम्बूद्वीप के अंतर्गत, और जम्बूद्वीप में जो रह रहे हैं भगवान के जो वहाँ रहने वाले भक्तजन हैं, प्रेमी हैं, वो लोग भगवान के महिमा का स्तुति का गान कर रहे हैं। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन के विषय में बताया गया है और भगवान को प्रणाम करते हैं देवता लोग, तो प्रणाम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऋषि तथा मुनि क्षिपुर अग्नि के अरणि के द्वारा उत्पन्न कर सकने में समर्थ हैं। प्रभु, ऐसे व्यक्ति आपको प्रत्येक वस्तु में यहाँ तक कि अपने शरीर में भी देखने का प्रयास करते हैं। मानसिक या भौतिक क्रियाओं जैसी अप्रत्यक्ष विधियों से आपको नहीं समझा जा सकता है। आप स्वतः प्रकट होने वाले हैं, अतः जब आप देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति सर्वत्र भावे न आपकी खोज में संलग्न है, तभी आप अपने को प्रकट करते हैं। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसमें भगवान को देखने की बात कही गई है। भगवान को कौन देख सकता है? भगवान किसके सामने प्रकट होते हैं? भगवान अपने को योग माया के द्वारा छिपाए रहते हैं। योग माया समावृत मूढ़ोहम नाभिजानाति मां वेद्य परमद्य। भगवान अपने योग माया के द्वारा, अर्थात भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, दो प्रकार की माया होती है, एक बहिरंगा शक्ति महामाया और दूसरी योग माया। तो योग माया भगवान को मोहित करते हैं, भगवान के स्वरूप को ढक देती है, अर्थात भगवान की जो ईश्वरता है उसको छिपा देती है, और भगवान के जो परिकर हैं उनको का जो स्वरूप है वो भी भूल जाते हैं, और भूल करके भगवान के अनुकूल उनके लीला में सहयोग करते हैं। इसलिए भगवान जब ब्रज में आते हैं तो उनकी भगवता जो है वो भूल जाते हैं, तिरोहित हो जाती है। भगवान ब्रज में अपने को भगवान नहीं मानते हैं, वो भगवान नहीं, भगवान की भगवता तिरोहित हो जाती है। वे अपने को भगवान जो हैं वो यशोदा जी का पुत्र मानते हैं कि मैं यशोदा का पुत्र हूँ, और ये जो ब्रज के सखा हैं वे हमारे मित्र हैं, और भगवान के जो सखा हैं वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, अपने सखा मानते हैं, और सखा मान करके उनके साथ सख्य व्यवहार करते हैं। सखा जैसे, सखा का अर्थ होता है साथ साथ जो खाता है, सह खादते इति सखा, जो एक साथ खाता है, एक साथ सोता है, एक साथ रहता है, उसको सखा। ऐसे भोजपुरी में कहते हैं एक दांत की रोटी खाते हैं, मतलब इतना प्रेम है, गाढ़ है कि बहुत हिल मिलकर रहते हैं, अति अतरंग प्रेम है। तो भगवान के सखा हैं वो भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, और उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, और उनको गाली भी देते हैं, और भगवान भी गाली देते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो हरे कृष्ण जीते श्रीदामा, श्रीदामा के साथ में जो राधा रानी के भाई हैं, भगवान खेल रहे थे और हार गए, और हारने का शर्त था कि जो हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा, ये दाव रखा गया था, तो जो हारेगा घोड़ा बनना पड़ेगा। तो श्रीदामा ने कहा घोड़ा बनो, श्री कृष्ण कहते कि नहीं, मैं राजा का लड़का हूँ नंद बाबा का, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। श्रीदामा कहते हैं कि तुम राजा हो तो अपने घर को, यहाँ तक खेलने खेलने में सब एक समान है, खेलन को कोई का गोसैया, यहाँ तक खेलने में कौन राजा का लड़का है कौन प्रजा का, यहाँ तो सब बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और श्रीदामा गाल देते हैं, गाल देकर कान पकड़ कर कहते हैं जा सारे घोड़ा बन। तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं हम नहीं बनेंगे, तो कहते हैं नहीं बनेगे तो खेल से निकाल देंगे, निकाल दिए। और श्रीदामा ने कहा चलो हम लोग अलग खेलेंगे। अब तो श्री कृष्ण उदास हो गए, अब उनको कोई मना नहीं रहा है, सब अब चले गए दूर। तो कहते हैं अरे भाई हमको मना लो कोई, तो घोड़ा बनोगे? तो हाँ घोड़ा बनूंगा। तो श्री कृष्ण घोड़ा बन गए और श्रीदामा उनके ऊपर चढ़ गए। तो भगवान कहते हैं कि सखा मोरे सख भाव करे स्कंद आरोहण, और माता मोरे पुत्र भावे करे लालन पालन, अति ज्ञानहीन करे लालन पालन, और प्रिया यदि मान करी करे भर्षण, वेद स्तुति है ते हरे मोर मन। चैतन्य चेतामृत में स्वयं भगवान कहते हैं कि सखा सख भाव से जब मैं हार जाता हूँ और मेरे कंधे पर जब चढ़ जाते हैं तो वो मुझको बहुत अच्छा लगता है। और जो यशोदा है मेरी माँ यशोदा, वो मैं गलती करता हूँ तो मुझको मारती है, डांटती है डंडा से। भगवान गलती कर दिए तो यशोदा जी ने उनको छड़ी से और झापड़ से हाथ से मारा, और श्री कृष्ण रोने लगे और सचमुच के रो रहे थे। कुंती जी तो कहते हैं कि मैं देखी आंख से कि आप रो रहे थे, अभिनय नहीं कर रहे थे, आप रो रहे थे, आप यशोदा जी के डर से डर करके रो रहे थे, आपने मटका फोड़ दिया था। गोप्या ददे तोय कृतास्त तोय दाम तावत याते दशासी सलिलान कलिजान संभ्रमाक्षम, वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्या सामाम विमोहयति यद्धेति यद्विभेति। जिन भगवान से स्वयं भय भी भयभीत करता है वो भगवान आज अपराध करने पर यशोदा जी के द्वारा पीटे जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं और डर से रो रहे हैं। तो ये अभिनय नहीं कर रहे थे, वास्तव में रो रहे थे। तो यशोदा जी वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण को डांटते हैं, श्री कृष्ण की वो माँ है, स्नेहमयी है, तो उनसे कोई गलती होता है तो डांटती है कि इस तरह से गलती करेगा तो हमारे इसकी आदत बिगड़ जाएगी, और आदत बिगड़ जाएगी तो दूसरे घर में भी चोरी करेगा, इसलिए बचपन से ही इसको सुधारना चाहिए। तो भगवान को प्रिय लगता है यशोदा जी का डांट भी, उसमें स्नेह है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि बंधन भी स्वीकार कर लेते हैं। जब श्री कृष्ण नहीं बांध रहे थे और यशोदा जी ने कहा नहीं मैं बांधूंगी, बिना बांधे नहीं छोड़ूंगी, गोपियों ने कहा यशोदा श्री कृष्ण के हाथ में बंधन नहीं लिखा है कमर में, इसलिए छोड़ दो। यशोदा जी ने कहा नहीं आज मैं इसको बांध कर ही रहूंगी। तो भगवान में बंधन नहीं है, भगवान प्रकृति के तीन गुण से परे हैं, तो उन्हें कोई बंधन नहीं है, बंधन से मुक्त हैं। बंधन है जीव के जीव के में संसार में जितने जीव हैं उन्हें बंधन है, भगवान तो इससे मुक्त है इसलिए उन्हें बंधन नहीं है। तो इसलिए भगवान नहीं बंध रहे थे कि ये दिखा रहे थे, उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति थी वो दिखा रही थी कि भगवान तो ईश्वर हैं, ईश्वर में बंधन कहाँ है। वे तो दूसरे के बंधन को काटने वाले हैं, खोलने वाले हैं, उनमें बंधन कहाँ है। भगवान ऐश्वर्य शक्ति दिखा रहे थे, लेकिन भक्त के सामने भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो काम नहीं करती है। जब भक्त में भगवान में होड़ होता है तो भक्त जीत लेते हैं भगवान को, भगवान हार जाते हैं। नहीं तो भगवान को अजित कहते हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन भक्त लोग अपने भक्ति के प्रभाव से, सेवा के द्वारा भगवान को जीत लेते हैं, बस में कर लेते हैं और खरीद लेते हैं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, सूरदास जी का पद है। मैं अपने भक्तों के हाथ बिक जाता हूँ, विकृतम ब्रजुवधम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण को खरीद लिया, श्री कृष्ण को किसके द्वारा, सेवा के द्वारा। गोपियों ने निष्काम भाव से श्री कृष्ण की सेवा की और जिसके कारण श्री कृष्ण उनके वशीभूत हो गए, खरीद लिए गए। सुखदेव जी कहते हैं कि विकृतम। तो भक्ति के द्वारा भगवान खरीद लिए जाते हैं और भगवान भी कहते हैं मैं बिक जाता हूँ। तो बिक जाते हैं इसका मतलब नौकर हो जाते हैं, खरीदने वाला स्वामी हो जाता है और भगवान नौकर हो जाते हैं। जो जैसा कराना चाहता है करते हैं, भगवान करते हैं। रथ हाकूं छप्पर छवाऊं, भगवान कहते हैं कि मैं भक्ति के वश में हो करके जब भक्त मुझको जीत लेते हैं तो कहते हैं रथ हाकिए। अर्जुन ने कहा आप हमारे सारथी बनिए, भगवान ने कहा ठीक है। ये नहीं भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारा रथ नहीं हाकूंगा, मुझे भगवान से तुम अपनी सेवा कराते हो। मानो भगवान पूछे कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ जाए, यहाँ के भक्त लोग कहें कि झाड़ू लगाइए, तो कहेगा मैं प्रधानमंत्री हूँ, हम यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आया हूँ। लेकिन भक्त और भगवान की का संबंध ऐसा विचित्र है कि भगवान को भक्त आज्ञा देते हैं रथ हाके। नंद बाबा कहते हैं खड़ाऊन ले आओ, भगवान जाते हैं छोटे अवस्था में खड़ाऊन ले आते हैं, गिर जाते हैं फिर उठते हैं। तो भक्ति में भक्त भगवान को आज्ञा देता है और भगवान उसको प्रेम से करते हैं। इस समय कोई बड़ा आदमी को कह दीजिए कि आप एक काम कीजिए तो एक तो करेगा नहीं, और करेगा भी तो बहुत भार मान करके। लेकिन भगवान भार मानकर नहीं करते हैं, सहज स्वभाव प्रेम से करते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम है, करुणा है, दया है। दया के परवश हो करके भगवान करते हैं, रथ हाँकते हैं। और एक भक्त के छप्पर, एक भक्त थे, आंधी से छप्पर उड़ गया, आग लग गया, तो भगवान अपने हाथ से उसको छाए छप्पर। रथ हाँकू छप्पर छवाऊं और मांगो नहीं कछु दाम। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ के बदले में कुछ मांगता नहीं हूँ, बनियागिरी नहीं करता हूँ कि आप हमको एक पैसा दोगे तो हम भी तुमको दो पैसे का सामान दूंगा, नहीं, कुछ नहीं मांगता हूँ। और बिकना पड़े तो बिक जाऊं, बिकना पड़े तभी बिक जाते हैं भगवान। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भगवान भक्तों के हाथ में बिक जाते हैं। जैसे कठपुतली जो होती है, काठ के जो उसका स्वामी होता है उसके अधीन वो जिस तरह नचाता है, या बंदर को पालने वाला, भालू को पालने वाला जैसे उसको नचाता है वैसे वो नाचता है, वैसे ही भगवान जब अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं, अपनी भगवता का विस्मृति कर लेते हैं, तो भक्त लोग जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। ब्रज की गोपी जन कहती हैं कि नाचो तो तुमको मैं छाछ दूंगा। छठिया पे छाछ पे नाच न चाहे। भगवान छाछ मांगते हैं कि हमको छाछ दे दो, वो कहती है कि नहीं छाछ ऐसे नहीं मिलेगा, तुमको छाछ चाहिए तो नाच करना पड़ेगा, और वो भी नाच अच्छा लगेगा तब छाछ के लो पिलाएं। अरे नृत्य अच्छी नहीं लगेगी तो छाछ नहीं मिलेगा। तो भगवान नाचते हैं, तो ये है स्वरूप विस्मृति। भगवान भूल जाते हैं तो उनकी जो जोग माया है वो भगवान के स्वरूप को विस्मृति करा देती है, और भगवान बस में होकर के और उनके अधीन होकर के लीला करते हैं। तो यशोदा जी के ताड़ना को भी सहते हैं, और भगवान नहीं चाहते भी बंध गए। भगवान ने सोचा कि मैं गोलोक से आया हूँ वात्सल्य भाव का आस्वादन करने के लिए, और यदि मैं अपनी भगवता दिखाऊंगा तो इस भाव का मैं रसा स्वादन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान के अवतार का मुख कारण है प्रेम रस निर्यास करते रसा स्वादन। भगवान की ये लालसा वहाँ पूरी नहीं होती है गोलोक में, बाल सुख या सख सुख या माधुर्य सुख, चार प्रकार के भाव का वहाँ रसा स्वादन भगवान नहीं कर पाते हैं, तो ये उनको लोभ रहता है, और उसी के रसा स्वादन करने के लिए कराने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ऋषियों का 6 प्रश्न है, पहला अध्याय में, उसमें एक प्रश्न है कि भगवान इस संसार में किस लिए अवतार लेते हैं, उनके अवतार का क्या कारण है, और अवतार लेकर ऐसा कौन सा कर्म करते हैं ऐसा, तो इसके विषय में सुत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। तो अवतार का ऐसे बहुत कारण है, राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। श्रीमद् भागवत में जितने अवतार हैं उन अवतारों के अनेक कारण हैं जिसके कारण भगवान अवतार लिए, लेकिन श्री कृष्ण अवतार के मुख्य प्रयोजन प्रेम रस निर्यास, रस करते आस्वादन, भगवान के अवतार का ये मुख्य प्रयोजन है। असुर संहार करना भगवान का काम नहीं है, स्वयं भगवान कार्य नहे भार हरण, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वो पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए अवतार नहीं लेते हैं, वो तो केवल नित्य लीला अनुरक्तो भगवान श्री कृष्ण, वो अपने नित्य जो उनकी लीला है गोलोक की लीला, सख्य भाव वात्सल्य भाव दास भाव माधुर्य भाव की जो लीला है, इसी लीला के रस के आस्वादन में ही रत रहते हैं निरंतर, हमेशा इस रस का आस्वादन करते हैं और कराते हैं। जो अच्छी वस्तु होती है तो अच्छे व्यक्ति को स्वयं खाते भी हैं और दूसरे को भी खिलाते हैं, लेकिन जो सेल्फिश होते हैं वो चाहते हैं कि हम खा जाएं, लेकिन भगवान जो हैं उदार हैं। उदार व्यक्ति जो होता है वो अपने भी खाता है और दूसरे को भी खिलाता है। उदार चेतानाम वसुधैव कुटुम्बकः, जो उदार व्यक्ति होते हैं उनकी सारी पृथ्वी जो है कुटुंब है परिवार है। तो भगवान भी उदार हैं, उत्तदार सीमा से जो परे हैं। हम लोग क्या हैं, ससीम हैं, सीमा के अंदर हैं, और भगवान जो हैं असीम हैं, सीमा से पार हैं, इसलिए उनको असीम कहते हैं। हम लोग प्रकृति के 3 गुण से अधीन हैं, भगवान उससे पार हैं। सत्वम विशुद्धम, भगवान शुद्ध सत्य में स्थित हैं, वो सीमा से प्रकृति के गुण से पार हैं, इसलिए वो असीम हैं। और उद्दार, उद्दार मतलब सीमा से जो ऊपर उठे हैं उनको उदार कहते हैं। तो भगवान उदार हैं, करुणामय हैं, और करुणामय होकर भगवान अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के उस रस का उस भक्ति का आस्वादन करते हैं और कराते हैं। आपने माधुरी देखी उपजय लोभ। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने रूप को देखकर स्वयं मोहित हो जाए, दूसरे के रूप को देख करके मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, लेकिन अपने रूप को देख करके वो आकर्षित नहीं होता है। लेकिन श्री कृष्ण की ऐसी विशेषता है कि अपने स्वरूप को देखकर, अपने सौंदर्य माधुर्य को देख करके वो स्वयं मोहित हो जाते हैं। एक बार बाल कृष्ण अपनी छाही को एक बर्तन में देखे, और ये भी हाथ में मकर दर्पण में, दर्पण में देखे, उनके हाथ में मक्खन था तो उनकी जो छाया है वो दर्पण में दिखाई देने लगे, तो कहते हैं अरे यार तुम तो मुझको देख लिया, तो तुम मैया से कहना मत, तुम भी माखन खा लो। तो भी बोल रहा है माखन खा लो। इस तरह से अपने रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं होते हैं। तो भगवान अपने माधुरी देखी उपजय लोभ, उनको लोभ हुआ कि ब्रज की गोपी जन है, हमें कौन सी ऐसी विशेषता है, सौंदर्य है, माधुर्य है, जिसको देखकर हमको चाहते हैं, आकृष्ट होते हैं। तो इस रस का आस्वादन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए, और अवतार लेकर के इस रस का आस्वादन किए। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का ये दो कारण है। एक तो है हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, जीवों को भक्ति में लगाना, लेकिन अवतार का एक ये गौण कारण है, मुख्य कारण है, इस भक्ति रस का आस्वादन करना, जिसको चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में स्वरूप दामोदर जी के साथ, राय रामानंद जी के साथ में आस्वादन करते थे इस रस का। तो इस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इस रस का आस्वादन केवल ब्रज में ही करते हैं, भगवान बन करके इस रस का आस्वादन नहीं किया जा सकता। भगवान छिपा करके अपनी भगवता का इसका रसास्वादन करते हैं, भक्त बन करके उस भक्ति सुख का आस्वादन करते हैं, भगवान बनकर नहीं। लेकिन ऐश्वर्य शक्ति उनकी भगवता को बीच बीच में प्रकट कर देती, जैसे भगवान ने मिट्टी खाया, यशोदा जी ने कहा तुमने मिट्टी खाई, कहते ना भगवान खाए हैं, और मुख में मिट्टी भी है, और माँ पूछ रही थी, बच्चों ने शिकायत किया कि कृष्ण मिट्टी खाई है, यशोदा जी ने छड़ी लेकर कहा मिट्टी खाए हो, तो कहते हैं मुख में मिट्टी है, तो मिट्टी को एक साइड में कर लेते हैं, कहते नहीं खाया हूँ, नहीं खाए हो तो तुम्हारा भाई भी कह रहा है बलदाव, तो कहते हैं वो तो जन्म से धूर्त है, वो हमको देखना नहीं चाहता है, वो हमारे विषय में झूठ बोलता है, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे माँ मैं नहीं खाया हूँ, और तुमको संशय है तो मुख में देख लो। तो भगवान की अपना मुख में ऐश्वर्य प्रकट कर दिए, विराट रूप दिखा दिए, लेकिन यशोदा जी को विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है, वो ऐसे मान रहे थे कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, जैसे कोई स्वप्न देखता है, स्वप्न में राजा हो जाता है, धनी हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, भिखारी हो जाता है जो राजा है, लेकिन स्वप्न टूटते ही वो खत्म हो जाता है। तो यशोदा जी ने उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया, विराट रूप का, और अपने को भी दर्शन किया, और बाल कृष्ण का भी दर्शन किया। यशोदा जी ने यह भी देखा कि एक यशोदा अपने पुत्र को डांट रही है उनके मुख में, तो भ्रमित हो गए। फिर भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को तिरोहित कर दिया, तो भगवान की भगवता प्रकट होती थी, लेकिन यशोदा जी उनको विश्वास नहीं करते कि भगवान है, अधिक से अधिक यही मानते थे कि इसको नारायण के ऊपर कृपा है। तो भगवान अपने भक्तों के सामने भगवता को छिपा देते हैं, लेकिन जब ऐसे भक्त जो उत्कृष्ट भक्त हैं उनके सामने उनकी भगवता छिपती नहीं है, प्रकट हो जाती है। जैसे षडभुज महाप्रभु का दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु जी ने दिखाया, फिर राय रामानंद जी को राधा कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। तो भक्तों के सामने भगवान की जो भगवता छिपती नहीं है, भक्त लोग पहचान लेते हैं, लेकिन भगवान अपने को भूल जाते हैं और भूल करके लीला करते हैं। तो भगवान किसको अपना दिखाते हैं, जो अधिकारी होते हैं उसको अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, और जो अधिकारी नहीं होते हैं उनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कराते हैं। इसलिए भक्त लोग भक्ति के प्रभाव से, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को जान लेते हैं। प्रभुपाद इसमें लिखे हैं कि बहुनाम जन्मना मंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवम सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानी लोग होते हैं मेरी शरण में आते हैं और मुझको जान करके मेरी भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि कोटि ज्ञानी मध्य एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ महात्मान कोटि रपि महामुनि। तो करोड़ों जो मुक्तात्मा है उनमें एक जो कृष्ण के जो परायण हैं भक्त, वो दुर्लभ हैं। तो ज्ञानी भक्तियों में भी, करोड़ों ज्ञानियों में जो एक भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं। इसलिए ज्ञानी भक्त से जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं। जो ज्ञानी है वो कहाँ जाएंगे, वो परमात्मा को प्राप्त करेंगे या निर्विशेष ब्रह्म के? लेकिन जो भक्त हैं, जो ब्रह्मवादी है, निर्विशेषवादी हैं, जो ज्ञानी है तो परमात्मा को या भगवान का जो निर्विशेष स्वरूप उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं। सब इसलिए जो भक्त हैं सबसे श्रेष्ठ हैं। तो करोड़ों भक्तों में एक कृष्ण के भक्त जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में भी। इसलिए भगवान के भक्त जो हैं भक्ति के प्रभाव से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि जो आपके भक्त हैं उनके सामने आप प्रकट करते हैं, और जो भक्त नहीं हैं उनको प्रकट नहीं करते हैं। नटो नाट धरो जथा, जैसे नाट के क्रियाकलाप को जो नाट शास्त्र के अनभिज्ञ व्यक्ति हैं उसको नहीं समझ सकते हैं, वैसे ही जो आपके भक्त नहीं हैं आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं, आप उनको छिपा कर रखते हैं, और जो भक्त हैं पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये भगवान है। तो लक्षण को देख करके भगवान के भगवत स्वरूप को भक्त लोग पहचान लेते हैं कि ये भगवान है। भगवान में जो छह ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्योश्चैव षड् भग इतिंगना, इस चार छह प्रकार के जो ऐश्वर्य है इसको देख करके भक्त लोग भगवान को पहचान लेते हैं। और भक्ति के प्रभाव से ध्रुव जी भगवान के भक्त थे, भगवान ने जब ही उनके गले में शंख का स्पर्श कराया तो भगवान की स्तुति करने लगे। और चित्रकेतु महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते थे लेकिन ऐसे प्रेम के कारण उनकी स्तुति नहीं कर पाए, लेकिन भगवान की कृपा का जब उन्हें अनुभूति हुई तो भगवान की स्तुति करने लगे। तो भगवान के भक्त जो हैं भगवान की कृपा से उनको ज्ञान हो जाता है। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे भगवान के संबंध में ज्ञान नहीं होगा। हम अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है बहुत तो भगवान को समझ जाएगा, नहीं समझेगा। जो भगवान का भक्त है वही समझ सकता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुमको मैं गीता का उपदेश क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं कहा कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, द्रोणाचार्य जी के शिष्य हो, नहीं। उन्होंने कहा भक्तोसि मे सखा चेति, तुम भक्त हो और मेरा सखा हो। तो सखा से भी भक्त का जो गुण है ये बलिष्ठ है। तो भक्ति के कारण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश किया अधिकारी जानकर। तो ज्ञानी लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं, जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं और उन्हीं के सामने भगवान अपने को प्रकट करते हैं, नहीं तो छिपा कर रखते हैं अपने ईश्वरत्व को, भगवत्ता को छिपा कर रखते हैं। क्योंकि भगवान सबके हृदय में हैं, सबकी स्थिति को जानते हैं, ईश्वर हैं, सबके नियामक हैं, कंट्रोलर हैं। वो अपने भगवत्ता से, अपने ईश्वरत्व से सबको बस में करके रखते हैं। और भक्त लोग जितने भी क्रिया करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, क्रियार्थ है। जो भी कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। यत करोसि यदश्नासि यत जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ कर्म करते हैं, खाते हैं, अर्पण करके खाते हैं, जो कर्म करते हैं भगवान के लिए कर्म करते हैं। मानस देह गेह जे कुछ मोर अर्पिल तुवा पदे नंद किशोर। भक्त का सब कुछ भगवान का होता है और उनका कुछ नहीं होता है। अपने शरीर को भी अपना नहीं मानते हैं, अब भगवान को मानते हैं। जो कुछ हमारे पास है भगवान को है। इसलिए निष्किंचन भक्त जो होते हैं वो भगवान के अतिरिक्त उनको कहने के लिए कुछ नहीं होता है कि मेरा ये है। हम लोग तो कहते हैं मेरा ये घर है, मेरा कपड़ा है, मेरा ये है वो है, लेकिन निष्किंचन भक्त केवल कृष्ण को ही अपना मानते हैं। कृष्ण ही हमारे हैं, इसके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। वो कृष्ण को अपना मानते हैं। कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य नहीं कामना। कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। एक ही इच्छा होती है कि कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। इसीलिए भक्त भगवान की सेवा चाहते हैं और सेवा भक्ति से प्राप्त होती है। तो भगवान भक्ति से सुलभ हैं। बिना भक्ति से भगवान सुलभ नहीं हो सकते हैं। भक्ति से ही भगवान को कोई प्राप्त कर सकता है, अपने प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से और महत जन की कृपा से। जब महत कृपा होती है, चित्रकेतु के ऊपर अंगिरा ऋषि और नारद जी की कृपा हुई, तो उनकी कृपा से इस गृहस्थ रूपी दलदल से वो पार हो गए। घर गृहस्थी का जो कार्य है वो दलदल है। दलदल समझते हैं? नदी के किनारे कछार पर एक ऐसा मिट्टी होता है, ऊपर से लगता है कि पानी नहीं है, सूखा सूखा सा लगता है, लेकिन जब ही उसके बीच में आदमी जाता है ऊपर, तो वो नीचे चला जाता है। और चला जाता है तो जितने निकालने का प्रयास करता है वो उतना अंदर चला जाता है। ऐसे हाथी का शरीर भाड़ा होता है तो दलदल में फंस जाता है, तो निकाल नहीं पाता है। लेकिन कोई बलवान व्यक्ति उसको टांग कर बाहर कर दे तो निकलने के बाद उसको कितना सुख होता है। तो वैसे ही घर गृहस्थी का जो कार्य है, फसावट है, वो दलदल के समान है। और उसको कैसे पार किया जा सकता है? तो महत कृपा से। महत जो भगवान के भक्त हैं, नारद, अंगिरा ऋषि, सनत कुमार, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि जो भगवान के महत जन है, नव जोगेश्वर, इनकी कृपा से इस दलदल से पार किया जा सकता है। महत कृपा से। महत कृपा बिना भक्ति प्रेम ना उपजे। जो भक्ति है बिना महत के कृपा के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। साधन भक्ति होते हैं रति रहुदय, हम साधन भक्ति करेंगे तो क्रमशः धीरे धीरे रति होगा, लेकिन महत कृपा से वो भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, बिना महत कृपा का नहीं। वो भी धीरे 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 वो साधन करने से भक्ति जो है रति प्रेम अनुराग राग, फिर जितना गाढ़ होता जाएगा भाव महाभाव रूढ़ भाव अति रूढ़ भाव ये होता जाता है साधन करने से। लेकिन महत कृपा जब होगी तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम साधन में लगेंगे, उनकी कृपा से महत कृपा से भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा उनकी अनुग्रह से। तो वैष्णव की कृपा से ही हम इस संसार से पार हो करके और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से सभी लोग पश्चात देशों में कृष्ण के शरण में आ गए और उन्हीं कृपा से हम लोग भी भक्ति में लग गए। प्रभुपाद जी नहीं होते तो इस तरह की जो भक्ति हमें करने को नहीं मिलती, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती भक्ति की। प्रभुपाद जी ऐसे हुए जो भगवान के विषय में निर्मल ज्ञान दिया उन्होंने, भगवान के विषय में कोई संशय नहीं है। इस पुस्तक के पढ़ने वाले प्रभुपाद जी के पुस्तक को एक बच्चा भी समझ जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान पढ़ कर के भगवान को नहीं समझते हैं कि भगवान भगवान है, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भक्त लोग समझ जाते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवान के विषय में इतना सुंदर ज्ञान प्रदान किया है कि पढ़ करके और उसको भक्त लोग समझ जाते हैं। भगवान के विषय में कोई अज्ञान नहीं है लेकिन दुनिया को अज्ञान है, खूब पढ़े लिखे हैं लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। अधिक से अधिक जाते हैं तो परमात्मा तक पहुंचते हैं कि भगवान जो है एक परमात्मा है, ऊपर भगवान है ये इसको तो कहना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, इसको तो केवल प्रभुपाद जी ही कहते हैं। और उन्होंने अपनी सभी पुस्तकों में कहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, एक व्यक्ति है, एक पुरुष है और वो अप्राकृत है, उनका जन्म कर्म दिव्य है, प्रभुपाद जी ने कहा है। तो भगवान के विषय में कम से कम इस्कॉन से जुड़े हुए जो भक्त है उनको कोई संशय नहीं है। तो भगवान की भक्ति करने से क्षयन्ति सर्व संशय, सब संशय नष्ट हो जाता है और व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान भक्तों के सामने ही अपने को प्रकट करते हैं, भक्त लोग उनको समझते हैं और जो भक्त नहीं है वो उनको नहीं समझ पाते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। और राम भगवान के साथ हम कितने रस से जुड़ सकते हैं? चार में से
है?
राम भगवान के साथ कितने रसों से हम जुड़ सकते हैं? माधुर्य वात्सल्य सख्य दास्य।
भगवान श्री राम मर्यादा में हैं, इसलिए हम उनके लीला में माधुर्य रस का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। वो एक पत्नी व्रत हैं, लेकिन श्री कृष्ण मर्यादा से उनकी जो लीला है वो परे की है, भगवान के साथ उस रस का आस्वादन किया जा सकता है और अन्य भगवत स्वरूपों के साथ इस रस का आस्वादन नहीं किया जा सकता है।
थैंक यू।
हरे कृष्ण।